नमस्कार भारत, 11 अक्टूबर दिन रविवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। तुर्की के अंकारा में शांति रैली में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या 95 हुई, 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त, कल होना है 49 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान। ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में जहां बिजली है ही नहीं, और कैसे ये गांव बन गया है कुंवारों का गांव।
कहा कहते थे बहू आपके यहाँ कोई लड़की हो तो हमारे इस लड़के की शादी करा, अब वो लोग बुढ़ी हो जाती, हर कोई चाहता है कि बहू आ जाए तो हमारा काम करे। तो मैंने कहा कौन करेगा, अपने मन में तो हम ये विचार लाते थे कि भाई यहाँ कौन करेगा, हम ही गलत फंस गए।
भारत के मुक्केबाज विजेंदर की पेशेवर मुकाबले में शानदार शुरुआत, नॉकआउट करके जीता पहला मुकाबला। पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। तुर्की की सरकार ने कहा है कि कल राजधानी अंकारा में हुए 2 बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। एक शांति मार्च के दौरान हुए इन संदिग्ध आत्मघाती धमाकों में लगभग 200 लोग घायल भी हुए हैं। तुर्की की सरकार ने देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उधर कुर्द समर्थक HDP पार्टी ने इन धमाकों के लिए तुर्की की सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। हमले में हताहत हुए लोगों में ज्यादातर HDP पार्टी के समर्थक हैं। इस रैली में कुर्द अलगाववादियों के खिलाफ तुर्की की सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। HDP पार्टी के नेता सलाहतीन देमिरतास ने कहा,
यानी बु ülkede barış isteyenler kazanacağız. Bundan emin olun.
हम लोग शांति के हक में हैं, हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। आप शांत रहिए, हमें बहुत दर्द है और बहुत गुस्सा भी है, लेकिन हमारे पास ताकत भी है और साहस भी। इन सबको कानून के कटघरे में लाएंगे। हम एक नरसंहार का सामना कर रहे हैं, एक खुले नरसंहार का सामना, लेकिन एकजुट होकर हम इससे भी उबर जाएंगे। ये थे HDP पार्टी के नेता सलाहतीन देमिरतास के शब्द। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि वह अफगान शहर कुंदूज में अमरीकी हवाई हमलों में निशाना बने एक अस्पताल में हताहत हुए लोगों को मुआवजा देगा। इस अस्पताल को अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्था MSF चला रही थी। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका अस्पताल की भी मरम्मत कराने में मदद देगा। 3 अक्टूबर को अस्पताल पर हुए हमले में 20 लोग मारे गए थे, जबकि कई घायल हो गए। उधर MSF का कहना है लगभग 30 कर्मचारी या मरीज अब भी लापता हैं। दक्षिण भारत की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक मनोरमा का देहांत हो गया है। लगभग 1200 फिल्मों में काम करने वाली मनोरमा को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने चेन्नई में कल आखिरी सांस ली। वो 78 साल की थीं। लगभग 6 दशक लंबे अपने करियर में उन्होंने 1000 से ज़्यादा नाटकों में भी हिस्सा लिया। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में वो बहुत ही लोकप्रिय थीं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नाइजीरिया की सीमा से सटे चाड़ के कस्बे में हुए कई बम धमाकों के लिए चरमपंथी संगठन बोको हराम को जिम्मेदार माना जा रहा है। चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि इन धमाकों में लगभग 40 लोग मारे गए, जबकि 50 घायल हुए हैं। भारत के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने अपना पहला पेशेवर मुकाबला कल जीत लिया। मैनचेस्टर में हुए इस मुकाबले में उन्होंने ब्रिटेन के सोनी वीटिंग को 3rd राउंड में नॉकआउट करके बाहर कर दिया। जीत के बाद 29 वर्षीय विजेंद्र सिंह ने अपने सभी प्रशंसकों का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उनका अगला मैच 30 अक्टूबर को हैरो में होगा। BBC समाचार।
तारीख 11 अक्टूबर दिन रविवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तुर्की की राजधानी अंकारा में कल हुए धमाकों में 95 लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 लोग घायल हैं। देश में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। धमाका उस समय हुआ जब अंकारा में एक शांति रैली का आयोजन किया गया था। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि जब युवा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान गाना गा रहे थे, तभी जोरदार धमाका हो गया। तुर्की के प्रधानमंत्री के मुताबिक ये आत्मघाती हमला था। तुर्की में अगले महीने चुनाव भी होने हैं। BBC संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुना रहे हैं अशोक कुमार।
तुर्की की राजधानी अंकारा में कल हुए जोरदार बम धमाकों के विरोध में हजारों लोग इस्तांबुल की सड़कों पर उतरे। ये तुर्की में इस तरह का अब तक का सबसे घातक हमला है। कल अंकारा में एक शांति मार्च के दौरान दो धमाके हुए जिनमें अब तक 95 लोग मारे गए हैं जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस रैली में कुर्द अलगाववादी संगठन PKK और तुर्की की सरकार के बीच जारी हिंसा को खत्म करने की मांग की जा रही थी जो दोनों पक्षों के बीच जुलाई के महीने में संघर्ष विराम टूटने के बाद से लगातार फैलती जा रही है। धमाकों के बाद प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू ने देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने इसे पूरे देश पर हमला बताया।
अजीज मिल्लतिम, değerli basın mensupları. Çok derin bir hüzün ve acı içindeyiz. Bugün
ये किसी एक गुट या उन लोगों पर हमला नहीं है जो रैली में शामिल हुए, न ही किसी एक पार्टी के ऊपर ये हमला है। मैं साफ कर दूं, ये हमला हमारे देश के ऊपर हुआ है, उसके सभी लोगों पर हुआ है। ये हमला लोकतंत्र के ऊपर हुआ है। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू के शब्द। उधर अमेरिका ने धमाकों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में अमेरिका तुर्की के लोगों के साथ है। लेकिन रैली में ही शामिल होने वाली कुर्द समर्थक पार्टी HDP ने धमाकों के लिए तुर्की की सरकार को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि ये उसके समर्थकों को निशाना बनाने की साजिश थी। धमाकों के बाद घटना स्थल पर सरकार विरोधी नारे भी सुनाई दिए। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता चेमालेतिन हाशिमी ने HDP के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया कि धमाके सरकार के इशारे पर हुए ताकि कुर्दों को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल बकवास बात है, बहुत ही बकवास बात है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ब्रिटेन में राजनीतिक विमर्श में कोई वैध पार्टी इस तरह का दावा कर सकती है? ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता हाशिमी के शब्द। लेकिन HDP पार्टी के नेता सेलहातीन देमिरतास बराबर अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने तुर्की की सरकार को हत्यारा बताते हुए कहा है कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं। ये धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब तुर्की में 3 हफ्ते बाद आम चुनाव के तहत वोट डाले जाने हैं।
तुर्की के अंकारा में हुए धमाकों में 95 लोगों की मौत। और अब रुख करते हैं भारत की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो गया। कल यानी 12 अक्टूबर को 10 जिलों के 49 सीटों पर मतदान होगा। NDA की ओर से इन 49 सीटों में से 27 पर भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी 13 पर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 6 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि महागठबंधन की ओर से जनता दल यूनाइटेड 24, राष्ट्रीय जनता दल 17 और कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2010 की बात करें तो इन 49 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड को 29, भारतीय जनता पार्टी को 13 और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली थी। इस तरह इस दौर के मतदान में जनता दल यूनाइटेड का बहुत कुछ दांव पर है। कुल 583 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा। इनमें प्रमुख हैं सराय रंजन से जनता दल यू के विजय कुमार चौधरी, अलौली से रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस, कल्याणपुर से रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज, तारापुर से जीतनराम मांझी की पार्टी के शकुनी चौधरी, समस्तीपुर से भाजपा की रेणु कुशवाहा, भागलपुर से भाजपा नेता अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे और कहलगांव से कांग्रेस के सदानंद सिंह शामिल हैं। और अब चर्चा दिल्ली की। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली की सरकार से हटाए गए आसिम खान ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। उन्होंने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने का दावा किया। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें सबूत CBI को दिखाने चाहिए। पूरी रिपोर्ट सुनिए निखिल रंजन से।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आसिम अहमद खान शनिवार को एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए। आसिम खान ने अपने खिलाफ साजिश की बात कह सबूत पेश करने का दावा किया और शुक्रवार को जारी हुए ऑडियो टेप पर सवाल उठाए। आसिम खान ने कहा,
सवाल ये खड़ा होता है कि उस CD में अगर एक आवाज आसिम अहमद खान की है तो दूसरी आवाज किसकी है? उसको मुझे नाम दिया गया आसिम अहमद खान मंत्री और दूसरे को नाम दिया गया बिचौलिया, कि जिनको बिचौलिया कहा जा रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई बिल्डर नहीं है, कोई मीडिया कर्मी नहीं है, वो जो बिचौलिए हैं वो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली मॉनेटरी फाइनेंस कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार में डायरेक्टर शकील मलिक नाम है उनका, क्यों उनका नाम नहीं बताया गया।
आसिम खान को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बिल्डर से पैसे मांगने के आरोप में मंत्री पद से हटा दिया है। इस बात की घोषणा टीवी पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। आसिम खान शनिवार को कॉन्फ्रेंस में उस कथित बिल्डर को भी अपने साथ लेकर आए और खुद पर लगे आरोपों के जवाब में उन्हें सबूत की तरह पेश किया।
जिस बिल्डिंग के लिए मुझ पर इल्जाम लगा उसके लैंडलॉर्ड उसके मालिक भी यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोग इनसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने अपनी बेगुनाही का आज ये पीसी मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दी थी, मैंने अपनी बेगुनाही साबित की आप लोगों के सामने।
आसिम खान का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से वो हैरान है और उन्हें किसी राजनीतिक षड्यंत्र का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक एक कर कई बातें सामने लाएंगे और तब इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा कि कौन निर्दोष है और कौन गुनहगार। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि आसिम खान को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने बीबीसी से कहा,
इनको जो कुछ भी कहना है वो ट्रायल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा ना, वो तो सीबीआई उनको बुलाएगी, उसे पूछेगी, उसके सवाल वहां पे रख देंगे, अपना पक्ष रख देंगे, है ना। हमारा कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर प्रथम दृष्टि अगर प्रमाण मिलते हैं और प्रमाण जो है कन्विंसिंग रखते हैं तो वो कार्रवाई करनी पड़ेगी।
उधर विपक्षी दल बीजेपी ने आसिम अहमद खान की बर्खास्तगी को नुकसान पर नियंत्रण करने वाला कदम कहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को भी अपने दागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिलीप पांडे,
आपके अंदर भ्रष्ट लोगों की फहरिस्त बनी हुई है, बीजेपी कांग्रेस में लाइन लगी हुई है, बीजेपी कांग्रेस हमें एक्यूज कर रहे हैं इसके उठाने के लिए कि ये अपने डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, इज्जत बढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब आपके पास तो लंबी लाइन है, आपने जितने के नामों को उजागर करिए, अपने लोगों को जेल भेजिए और अपनी इज्जत खूब बढ़ा कर दीजिए, तो इसके लिए आपको नैतिकता की ताकत चाहिए होती है, आपके अंदर ईमानदारी का दम होगा तब आप ऐसे कदम उठा सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपने की बात कही है और जाहिर है कि उसकी प्रक्रिया भी शायद कहीं न कहीं शुरू हो गई होगी, लेकिन फिलहाल तो प्रेस वार्ताओं का दौर चल रहा है और राजनीतिक दल अपनी बात से ज्यादा दूसरों की बात कहने में मसरूफ हैं।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अफवाह पर मचे बवाल के बाद अब शांति है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और देर शाम तक वहां स्थिति सामान्य हो गई थी। एक दिन पहले यहां दो समुदाय के लोगों के बीच तनाव फैल गया था। यहां कुछ गाड़ियों के साथ ही दुकानों में भी आग लगा दी गई थी। कल देर रात जिले के डीएम चंद्रपाल सिंह से हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने बात कर घटना पर पूरी जानकारी ली।
मैनपुरी में स्थित सामान्य है, बाजार खुले हुए हैं, लोगों का सामान्य है। आज हमने पीस कमेटी की बैठक की थी, उसमें सभी समुदाय के लोग आए थे, हिंदू मुस्लिम जैन सभी धर्मों के लोगों ने, उसमें अब सब सामान्य, कोई कठिनाई नहीं है। वहाँ
जो मामला हुआ ये हुआ किस वजह से था?
कल अफवाह फैल गई कि एक गाय की गौकशी हुई है, जबकि हकीकत ये है कि उस जब पोस्टमार्टम उस गाय कट कराया गया तो उसमें कोई कहीं से उसको गौकशी के कोई निशान भी नहीं थे और वो 24 घंटे पहले की मरी हुई गाय थी, जिसके को दो व्यक्ति उसकी खाल निकाल रहे थे, उसको उन्होंने गौकशी का स्वरूप प्रदान कर दिया, अफवाह फैला दी। जो लोगों ने अफवाह फैलाया उसमें से 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, दो जो इनके ऊपर आरोप है कि खाल निकाल रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनकी वजह से ये सब घटना हुई, वो खुले में खाल निकाल रहे थे। और कुछ लोगों ने उस पर वाहनों पर आग लगाई है और दुकानों पर भी आग लगाई है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की, उनकी धाराओं में मुकदमे कर दिए गए हैं, पुलिस ने उनको FIR करके जेल भेज दिया।
ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये कौन लोग हैं और क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे इनकी?
ये तो उपद्रवी हैं।
इनका किसी संगठन से भी कोई रिश्ता है?
उपद्रवियों का कोई रिश्ता धर्म थोड़े होता,
मतलब किसी संगठन या किसी राजनीतिक दल या किसी इस तरह के?
वो सिर्फ उपद्रवी हैं, उपद्रवी हैं।
तो ये सब लोग अभी हिरासत में हैं?
ये हाँ, पुलिस चालान कर दे, जुडिशियल कस्टडी में है।
तो अब कोई कहीं गड़बड़ी नहीं है, कोई तनाव या कोई अशांति नहीं है, कोई घायल तो नहीं हुआ इस पूरे प्रकरण में?
नहीं, कोई घायल नहीं हुआ।
और अब समय है खास रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश का के बांदा जिले का माखनपुर गांव इन दिनों कुंवारों का गांव कहा जाता है। गांव के 150 से ज्यादा नवयुवक कुंवारे घूम रहे हैं और शादी के लिए लड़कियां मिल नहीं रही हैं, क्योंकि गांव में बिजली नहीं है और न ही और कोई सुविधा है। गांव और किसानों का हाल जानने निकली संवेदना यात्रा जब इस इलाके में पहुंची तो बीबीसी संवाददाता अजय शर्मा ने क्या देखा, आप भी सुनिए।
अगर आपको 1957 की मदर इंडिया का गांव देखना है तो बांदा के गांव माखनपुर चलें। माखनपुर जैसे गांव 2015 में भी हो सकते हैं और ये कोई ताज्जुब नहीं। मगर लालटेन की रोशनी में जी रहे माखनपुर में सिर्फ घुप अंधेरा ही नहीं पसरा रहता, बिजली ने इस गांव का सामाजिक ताना बाना भी बदल डाला है। जब मैं उत्तर प्रदेश के इस गांव में रात 11 बजे पहुंचा तो सब तरफ अंधेरा था। तारों की रोशनी ने हमें गांव तक पहुंचने का वो रास्ता दिखाया जिस पर आप शायद दिन में भी चलना ना पसंद करें। कालिंजर को जाने वाले रास्ते पर गांव में घुसने का वही एकमात्र रास्ता है। करीब 2 से 3 फीट गहरे गड्ढों से बनी धूल की मोटी परत से अटी एक कच्ची पगडंडी। गांव के जिस घर में रात को हम रुके वहां की बहू नीलम यादव ने हमें हकीकत से रूबरू कराया। नीलम खुद बीए और बीएससी पास हैं और अपने आसपास के माहौल को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। बांदा शहर की रहने वाली नीलम शादी के बाद 5 साल लगातार गांव में रहीं, मगर अब बच्चों के भविष्य की खातिर शहर में रहती हैं।
सर अभी की आप बात बताएं, हमारी 2005 में हमारी नंद बीमार हुई थी, ये पुल नहीं था ओवर ब्रिज पुल, तब हमारी नंद को यहाँ पर, मैं तो 4 महीने नहीं आती थी, सीधी सी बात, हम शहर के बड़े पले, हमने 4 महीने आते थे, जब यहाँ रक्षाबंधन से पहले हम लोग चले जाते थे, 4 महीने में यहाँ झांकने नहीं आती थी, शादी जरूर हो गई थी। और नंद हमारी बीमार हुई 2004 या 2005 में, तो उनको इतनी बुरी हालत थी, यहाँ भादों का दिशा है, क्या होता है भाई, अगस्त में इतनी भयानक बीमार हुई कि यहाँ ले जाने की कोई व्यवस्था थी नहीं, खटिया बनाई गई, तब नदी थी, नदी पार करके ढो के ले जाया जाता था, तो इस वजह से मैं यहाँ कभी नहीं आने की कोशिश करती, अपने सास को पापा को भी कहती थी आपने मेरी कहाँ शादी कर दी।
उनका दर्द उनकी आंखों की कोर से टपकने को बेताब आंसुओं में छिपा था। 2500 की आबादी और 900 वोटरों की गाँव माखनपुर में आज भी रात को घरों में लालटेन की रोशनी में लोग खाना खाते हैं। बहुतों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं, जिनके पास हैं वो उन्हें चार्ज कराने गांव के बाहर एक दुकान पर जाते हैं। गांव में बिजली नहीं तो पीने का पानी भी नहीं और ना कोई स्वास्थ्य केंद्र। रही सही कसर सूखे ने पूरी कर दी है, कई कुएं सूख चुके हैं, हैंडपंपों का पानी 100 फीट से नीचे जा चुका है। मुसीबतों के इस गाँव में बिजली ने अगर सबसे ज़्यादा कहर ढाया है तो वो हैं कंवारे। नीलम की जुबानी ही सुनिए।
जब हम शुरू में आए थे तो हमारे यहाँ की दाइयाँ कहा करती थी, ये क्या होता है, विश्वकर्मा जात के लोग कहा करते थे, बहू आपके यहाँ कोई लड़की हो तो हमारे इस लड़के की शादी करा। अब वो लोग बुढ़ी हो जाती, हर कोई चाहता है कि बहू आ जाए तो हमारा काम करे, तो मैंने कहा कौन करेगा। अपने मन में तो हम ये भी चाल लाते थे कि भाई यहाँ कौन करेगा, हम ही गलत फंस गए। और फिर हमारे यहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियाँ कोई एडजस्ट नहीं करेगा यहाँ आके।
नीलम की बात सही थी। गाँव के एक बुजुर्ग के मुताबिक गाँव में करीब 150 कुंवारे लोग हैं जिनमें ज़्यादातर 65 से 35 साल की उम्र के हैं। बिजली और पीने का पानी न होने से गांव को कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, हालांकि लड़कियों की शादी तुरंत हो जाती है। शिववदन के छोटे भाई की शादी हो चुकी है। जब मैंने 42 साल के शिववदन से पूछा तो उनका कहना था,
जुगाड़ तो बहुत लाग रहे हैं कि शादी हो जाए।
आपके परिवार में कौन कौन है?
भाई है छोटा रमराहत है,
उसकी शादी हो गई है। कितनी उम्र है उसकी?
वो खैर उम्र हो गई हो चाहे 30-35 साल
उसकी हो गई, आपकी नहीं, छोटे भाई की हो गई। तो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर कोई लड़की आएगी, जैसे उसकी शादी हुई है तो मेरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं लगता आपको?
लगता है तो क्या करें, जब
नहीं तो खुद अपने रिश्ते की बात नहीं चलाई आपने?
चलती है, चलाई गए हैं, कट लाग जाते कट लाग जाते।
मतलब उसका क्या मतलब है, कट लग जाता है,
काट देते हैं शादी,
शादी नहीं होने देते हैं? कौन नहीं होने देता है?
शिवबदन के सिवाय कोई ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें लड़की नहीं मिली। बाकी लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद ही शादी नहीं की। 45 साल के मलखान सिंह कहते हैं,
न कोई साधन है यहाँ आने जाने का, न कुछ है, इसलिए न लाइट है, यहाँ जानवर सर लोग रहते हैं, न कोई व्यवस्था है, न लाइट की, न फाइट की, न पानी की।
क्या ऐसा भी हुआ कि आपने कोशिश की और कोई लड़की ना आई हो इधर रहने के लिए?
नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ।
आपके माता पिता हैं?
सब हैं।
तो उन्होंने कोशिश की कोई शादी की?
कोशिश तो बहुत किया।
उन लोगों ने बात भी चलाई किसी लड़की?
बहुत चलाई बात।
तो आपने क्या किया उसमें, आपने मना कर दिया?
हाँ, मना कर दिया।
आप नहीं चाहते कि कोई लड़की यहाँ पे ऐसे रहे? तो और भी तो औरतें रह रही हैं यहाँ पे?
अरे यहाँ तो बहुत रह रही हैं, पूरा गाँव में रहती हैं।
तकरीबन यही बात 60 साल के नाना भाऊ और 40 साल के रमाशंकर ने बताई। हालांकि करीब 45 साल के राम मिलन के मुताबिक उनकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि गांव में खाने पीने की तकलीफ है और झुरहा पड़ता है, यानी सूखा पड़ता है। क्या बिजली किसी समाज के ढांचे में मूलभूत बदलाव ला सकती है? 1957 के भारत में ऐसा न हुआ हो, पर 2015 में ये हो रहा है और ये वो देश है जिसमें पूरे एशिया में पहली बार बिजली की चमक दिखाई दी थी और जो आज़ाद होकर 68 साल का बूढ़ा हो चुका है। अजय शर्मा, BBC, गांव माखनपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश।
ये थे हमारे सहयोगी अजय शर्मा। अजय शर्मा की रिपोर्टें आपको कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताइएगा।
दुनिया की बड़ी खबरें BBC के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर BBC दुनिया, ETV नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है BBC दुनिया, मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए BBC दुनिया शाम 9:20 पर ETV के साथ साथ bbchindi.com और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी। BBC दुनिया।
और चलिए अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा मुंबई में कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो आज आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें रिश्वत न लेने की चेतावनी देंगे। हाल ही में केजरीवाल ने अपने एक मंत्री को रिश्वत के आरोप लगने के बाद पद से हटाया है। मध्य प्रदेश का पाटीदार समाज आज रतलाम में महापंचायत करेगा जिसमें हार्दिक पटेल भी मौजूद रह सकते हैं। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। फुटबॉल के दीवाने कोलकाता में उनका जोरदार स्वागत होने की उम्मीद है। उधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। इससे पहले T20 सीरीज में भारत को मेहमान टीम के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें तुर्की पर बनी रहेंगी जहां राजधानी अंकारा में शनिवार को हुए 2 बम धमाकों में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और नेपाल में आज देश के नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए संसद में मतदान होगा।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अशोक कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अशोक।
जी पंकज जी, आज के कई बड़े अखबारों में जो सबसे बड़ी खबर छाई हुई है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं पर कल जो CBI के छापे पड़े हैं उसको लेकर खबर सब अखबारों में है। अमर उजाला की सुर्खी है काला धन मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा पर CBI का छापा। वहीं दैनिक जागरण ने भी ऐसी सुर्खी के साथ लिखा है फर्जी कंपनियां खोलकर आयात के जरिए 6,172 करोड़ रुपए की रकम बाहर भेजी गई थी। अखबार लिखता है कि विजय माल्या के घर और दफ्तरों पर भी छापे पड़े हैं। साथ ही अखबार ने कल अपनी पहली पेशेवर बाउट जीतने वाले भारत के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की तस्वीर भी पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक भास्कर लिखता है विजय माल्या वाली खबर पर कि 900 करोड़ रुपये का कर्ज न लौटाने के चलते उन पर यह कार्रवाई हुई है। अमर उजाला के पहले पन्ने पर खबर है सारा जोसेफ ने भी लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार।
होड़ सी लग गई एकदम
जी, एक के बाद एक। उन्होंने कहा है कि देश में पैदा की जा रही है चिंतनीय स्थिति। वहीं दैनिक जागरण ने इस सिलसिले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का इंटरव्यू किया है जिसकी सुर्खी लगाई गई है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं जो भाजपा को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश
की है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि दादरी में जो हुआ वो कानून व्यवस्था का मसला था जो राज्य सरकार के दायरे में आती है।
हाँ, नवा टाइम्स के पहले पन्ने पर दिलचस्प खबर है और खबर कहती है कि दादरी का गांव बिसाड़ा उसको लेकर खबर है कि अब सद्भावना की मिसाल पेश करेगा बिसाड़ा। खबर कहती है कि वहां आज हिंसा भड़कने के बाद पहली बारात आने वाली है और शादी है एक मुस्लिम परिवार में और शादी का इंतजाम करने में हिंदू समुदाय के लोग जी जान से जुटे हैं ऐसा अखबार कहता है। कुछ खबरें बिहार चुनावों के, अमर उजाला के विशेष पन्ने पर LGP नेता चिराग पासवान का इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में जो इस समय मोदी लहर है ना वो लोकसभा चुनावों के मुकाबले और ज़्यादा तेज चल रही है। साथी हैं उनके, जाहिर है माहौल बनाना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान भी है कि आरक्षण पर क्यों खामोश है मोदी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को बिहार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर खुली बहस की चेतावनी दी है। नवा टाइम्स ने भी नीतीश का विशेष इंटरव्यू छापा है जो उन्होंने टाइम्स नाउ चैनल के अर्नब गोस्वामी को दिया है और बात लगभग वैसी है जिसमें वो विकास का हवाला दे रहे हैं और मोदी की चुप्पियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। नवा टाइम्स में आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज होने की भी खबर है, और ये केस इसलिए दर्ज हुआ है कि उन्होंने गोमांस के बारे में एक विवादास्पद बात कह दी है। बात यह है कि उन्होंने कहा है कि ऋषि भी गोमांस खाते थे,
जिस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई है, खासकर बीजेपी की ओर।
जी बिल्कुल, होना है आजकल तो गोमांस।
मैं कल संत मुनियों को भी देख रहा था, वो भी इससे बहुत नाराज है।
कुल मिला के राजनीति बहुत गर्म है। वहीं दिल्ली से छपने वाले लगभग सभी अखबारों में खबर है भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाए गए मंत्री आसिम अहमद खान की। उन्होंने सफाई दी है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। उनका कहना है कि उन्हें आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार होना पड़ा है।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। बीजिंग ओलंपिक और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता भारत के विजेंद्र सिंह कल इंग्लैंड में प्रोफेशनल मुक्केबाजी रिंग में उतरे, जहां उनका सामना इंग्लैंड के ही सोनी विटिंग से था। पंजाबी गीत की धुन पर विजेंद्र ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पहले प्रोफेशनल मुकाबले की शुरुआत की।
प्लीज वेलकम इन टू द रिंग इंडियाज फेवरेट बॉक्सिंग सन फ्रॉम दिल्ली विजेंद्र सिंह।
शुरुआती दो राउंड में ही विजेंद्र का फुटवर्क और पंच शानदार रहे, तो तीसरे राउंड में तो विजेंद्र ने लेफ्ट पंच, राइट पंच और स्ट्रेट पंच लगाते हुए सोनी विटिंग को रिंग में लगी रस्सी पर झूलने पर मजबूर कर दिया और मुकाबला अपने नाम किया। इस तरह विजेंद्र ने पहली ही जीत नॉकआउट के रूप में हासिल की। उधर टेनिस के कोर्ट पर भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने चाइना ओपन में महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने चीन ताइपे की चान हाओ चिंग और चान युंग जान की जोड़ी को 6-7, 6-1, 10-8 से मात दी। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने इस साल ये 8वां खिताब अपने नाम किया है। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत के अजय जयराम डच ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। तीसरी वरीयता हासिल अजय जयराम ने मलेशिया के गैर वरीयता हासिल खिलाड़ी गोह सुन हुयात को 40 मिनट में 21-14, 21-15 से मात दी। फाइनल में अब अजय जयराम का सामना 12वीं वरीयता हासिल एस्टोनिया के राहुल मस्ट से होगा। उधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। इस सीरीज का पहला मैच आज कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले 2020 सीरीज के शुरुआती दोनों मैच हारकर भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से गंवा दी। कल भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम में अजिंक्य रहाणे की जगह को लेकर साफ कर दिया कि फिलहाल वो नहीं खेलेंगे। उन्हें नंबर 6 या नंबर 7 की जगह के लिए टीम में नहीं रखा जा सकता और 2020 के आधार पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता। रहाणे ऊपरी क्रम में अच्छा खेलते हैं और निचले क्रम में उन्हें खेलने में परेशानी होती है, धोनी के शब्द। दूसरी तरफ तेज गेंदबाज डेल स्टेन एक दिवसीय सीरीज में खेलेंगे, तो इमरान ताहिर, जेपी डुमिनी और कप्तान एबी डिविलियर्स के दम पर दक्षिण अफ्रीकी टीम बेहद मजबूत है। ऐसे में पहला ही मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है।
और कार्यक्रम के अंत में अब समय है मुख्य समाचारों का।
बीबीसी समाचार। तुर्की की सरकार ने कहा है कि कल राजधानी अंकारा में हुए 2 बम धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 95 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या 200 से ऊपर है। उधर कुर्द समर्थक एचडीपी पार्टी ने इन धमाकों के लिए तुर्की की सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि वह अफगान शहर कुंदूज में अमरीकी हवाई हमलों में निशाना बने एक अस्पताल में हताहत हुए लोगों को मुआवजा देगा। दक्षिण भारत की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक मनोरमा का देहांत हो गया है। लगभग 1200 फिल्मों में काम करने वाली मनोरमा को कल दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए, 8 बजे विश्व भारती में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।